نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیغام قرآن سیریز میں پارہ نمبر 10 ہمارے سامنے ہے. ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے صورتوں کا بھی رب بنایا اور آیات کا رب بھی جوڑا. قرآن پاک کو سطحی طور پر دیکھنے والا کبھی بھی اس گہرائی کو نہیں پا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر جیسے قرآن میں رکھی ہے. آپ کا میرا فرض ہے کہ ہم اس کتاب کا کم از کم اتنا تو فہم حاصل کریں کہ جب ہم نماز میں قرآن پاک پڑھیں سنیں اور اسی طرح سے کہیں بھی تلاوت ہو یا ہم خود کریں تو ہم اس کو جانتے ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانفال کے مضامین کیا ہیں. پیچھے سے بات چل رہی ہے غزوہ بدر پر تبصرہ, قتال اور مال غنیمت کے بارے میں ہدایات, اہل ایمان کی صفات بیان کی گئیں اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہمیں اور بھی چیزیں دکھیں گی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ تھی, اور جب ہم اس قرآن کی آیتوں کو سیرت کی روشنی میں پڑھتے ہیں تبھی تو ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے, ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جیسے بن سکیں. تو آئیے ذرا آیتوں کے ساتھ ٹائٹلز بھی دیکھتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی اس کی وضاحت بھی دیکھتے ہیں. آیت نمبر 41 مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے. سورت کے شروع میں سوال تھا کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے, یسألونک عن الأنفال, تو وہاں جواب نہیں دیا گیا کیونکہ ابھی تربیت مقصود تھی. تو کیا پتہ چلا کہ جو شخص انڈر ٹریننگ ہو, تربیت کے اندر ہو, اس کے ہر سوال کا جواب فوراً نہیں دینا چاہیے, لیکن جو منچ چکا ہے, جو بالکل ایک چیز کا حق ادا کر بھی رہا ہے اور اس کو اچھی بری بات کا فرق ہے, تو پھر اس کی بات کا جواب ضرور دینا چاہیے, فوراً دینا چاہیے, کیونکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں پوچھے گا کہ جو نہیں پوچھنی تھی. پھر اس کے بعد 42 سے پھر 44 بدر کا مارکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا, یعنی انسان کچھ بھی کہہ لے یہ کیوں ہوا, یہ جنگیں کیوں ہوتی رہیں, اللہ کی طرف سے تھے. کس جماعت سے مسلمانوں کا واسطہ پڑنا تھا اور مسلمان کیا چاہ رہے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. آیت 45 سے 47 دوران جنگ مسلمانوں کے لیے ہدایات ہے, اور یہ وہ ہدایات ہیں جو دنیا کے کسی بھی میدان میں فتح اور کامیابی کا زینہ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, سے لے کر آگے تک کی چند اور چیزیں بھی جس میں یہ بتا دیا گیا کہ ظاہری اسباب بھی اختیار کرو, اس کی بھی اہمیت ہے, ہتھیار بھی چاہیے, فوج بھی چاہیے, پلان بھی کرنا ہے, لیکن جو تربیت ہے, جو کردار سازی ہے وہ لازمی ہے. اور واطی اللہ و رسولہ ولا تنازع فتف شلو و تز خبر ہی حکم وصبر ان اللہ ما صابرین, یہ گولڈن ورڈز ہیں. جس بندے میں یہ چیزیں آ جائیں گی وہ انشاءاللہ جنگ میں بھی جیتے گا اور امن میں بھی جیتے گا. آیت 48 شیطان کی دھوکہ دہی, عین وقت پہ دھوکہ دے جاتا ہے, یعنی وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا والی بات ہے کہ جب دیکھا کہ وہاں فرشتے آگے تو وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم, دعوے تو یہ کر کے گیا تھا کہ میں تمہارا ہمسایا ہوں, میں وہاں کام کروں گا, لیکن فلما ترا اتل فیتانی نقص علی عقبیہ, ایڑیوں پہ بھر گیا. وقال انی بری منکم انی ارا ما لا ترون, پھر وہاں سے بھاگا اور کہنے لگا اب میں تم سے بیزار ہوں اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, یعنی فرشتے, اور انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی دیکھیے سب سے زیادہ نڈر ہے اور کہتا گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ساتھ ہی واللہ شدید العقاب. تو کیا پتہ چلا کہ لفظی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو شیطان ہی کیوں نہ مان جائے لیکن عمل نہیں ہے تو اس کی جواب دہی ہے. پھر آیت 49 میں منافقانہ طرز عمل کی بات ہے, جہاں جنگوں کی بات ہوگی وہاں نفاق کی بات ضرور ہوگی. اسی لیے اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, بیمار دلوں والے ایسی ہی باتیں کر کے ہمتیں توڑا کرتے تھے. پھر آیت 50 سے 52 اذیت ناک موت ہے, یعنی بدر میں وہ بڑے بڑے سر کچلے گئے جن میں رعونت تھی, جن میں تکبر تھا اور جن کے اندر اسلام کے خلاف پلاننگ ہوتی تھی. اللہ نے کفر کا سر توڑ دیا. وہ بڑے بڑے 70 تھنک ٹینکس جو اس دور کے اینکرز تھے, اللہ نے ان کو پہلے ہی جنگ میں لے لیا, گویا کہ پہلے ہی حلے میں उनका खात्मा कर दिया कि तुम तो जाओ आगे, बाकियों को हम बाद में निबट लेंगे। तो याद रखिए कि वो सर गर्दन के साथ रहने के काबिल नहीं जो अल्लाह और उसके रसूल और उन दोनों के खूबसूरत दीन के खिलाफ सोचें, उनके बारे में सोचें। अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म किया बज़ूक व अज़ाबल हरीक कहकर, और वजह भी बता दी, ज़ालिका बिमा कद्दमत अईदीकुम, ये उनके हाथों की सजा थी, जो करा वो भरा, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर 53 और 54, ना शुक्री से नेमतें छिन जाती हैं। हकीकत है ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन नेमतन अनअमहा, यानी अल्लाह नेमत नहीं लेता जब तक के नेमत की ना कदरी ना की जाए और जिसने नेमत दी उसकी बात ना मानी जाए। ना शुक्री से नेमतें छिनती हैं, मादी नेमतें भी छिन जाती हैं और रूहानी नेमतें भी छिन जाती हैं। आप इस इल्म की कदर छोड़ दीजिए, आप वक्त देखना छोड़ दीजिए, आप इरादा छोड़ दीजिए कि मैंने कुछ करना है। कल याद भी नहीं होगा किस वक्त कोई क्लास होती थी, इस वक्त कुछ पढ़ते थे। तो नेमतों को हमेशा अंडर एस्टिमेट करना या ओवर एस्टिमेट करना, ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। फिर इसी तरह से 55 से 57, यहूद की अहद शिकनी। चूँकि मदीना में साथ रहते थे, हमसाए थे मुसलमानों के, तो बात बात पे वास्ता पड़ता था और बात बात पे अहद तोड़ते थे। तो अल्लाह ताला ने उसी की बात करके कह दिया, अल्लज़ीना अहदत मिनहुम थुम्मा यनकुदूना अहदहुम फ़ी कुल्ली मर्रतिन वहुम ला यत्तकून, यानी बार बार अहद करते हैं और तोड़ते हैं, ये अल्लाह से डरते नहीं है। यानी अहद शिकनी के लिए डर और खौफ बड़ी ज़रूरी चीज़ है। 58, अहद याफ्ता फरीक के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। यानी जब कोई आपसे मुआहदा कर ले, कोई एग्रीमेंट हो जाए, कोई उसके साथ आपका आपस में डिसीजन हो जाए, फिर आप उसके बारे में कोई गलत बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर एक किस्म की वो अपने अहद की अमान में आ जाता है। वही मतखाफन न मिन कौमिन खियानतन फम बिजलहिम अला सवाइन, और अगर कभी ऐसे अहद तोड़ने पड़े तो फिर सरेआम तोड़े जाएंगे, ढक छुप के या अंदर खाते से रूल्स और कवानीन बदल नहीं जाएंगे। फिर 59 से 60, जंग के लिए भरपूर तैयारी का हुक्म है। ये नहीं कि चूंकि आप मुसलमान हैं तो आप तो बहुत पीस मेकर हैं और आप तो हथियार नहीं बनाएंगे, और दूसरी तरफ पूरी पूरी तैयारियां हों। इस सोच ने भी दुनिया में आज इस्लाम को बहुत मुश्किल दराहे पे खड़ा कर दिया, और फिर माइंडसेट ऐसे बन गए कि ज़रा किसी मुसलमान के साथ असलहे का कोई तसव्वुर आया तो उसको सारी दुनिया में बदनाम किया गया, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी। तो आप भी पीस रखें, हम भी पीस रखेंगे, आपके पास भी वेपन्स नहीं है, हमारे पास भी वेपन्स नहीं है, आप भी बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, हम भी बहुत प्यार मोहब्बत से रहेंगे, इस्लाम का तो यही मिजाज है। और अगर नहीं तो फिर दूसरी बात भी होगी, वाइद लहु मस्तातु मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरहिबू नबी अदु अल्लाह व अदुवकुम। तो एक जुमला लिख लीजिए, हथियार चलाने से ज़्यादा दिखाने के लिए होते हैं। असले की नुमाइश जायज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल आखिरी हद तक उसे रुकना चाहिए। 61 से 62, दुश्मन की तरफ से सुलह की पेशकश कबूल कर ली जाए, क्योंकि शायद वो भी बदलना चाहता है, और ये तो दुश्मन है मैदान जंग के। आम जिंदगी में मुसलमानों में आपस में गलतफहमियां हो सकती हैं, कभी कभी शौहर बीवी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, अब बाद में एहसास होता है कि नहीं ये नहीं, अब सुलह कर लेते हैं, वो बच्चों के साथ है, वो फलां है, सुलह कर लेनी चाहिए। जो बंदा सुलह की पहल करे उसको वेलकम कीजिए। वइन जनहुल्लिसलमी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, पास में अंदेशे आते हैं, ये ना हो जाए फिर पहले वाली बातें ना दोहराई जाएं। और इस सिनेरियो में देखिए तो हाय दुश्मन से सुलह की, कहीं धोखा ही ना दे, कहीं घर में आ जाए और बाद में फिर दोबारा बदल जाए, तो कहा अल्लाह तुझे काफ़ी होगा, तवक्कुल करो अल्लाह पे। यानी सुलह इतनी प्यारी चीज़ है कि इसके ऊपर रिस्क भी लिया जा सकता है। फिर आयत 63-64 है, साथियों के दरमियान उल्फत अल्लाह के फजल से ही मुमकिन है। यानी सहाबा कराम को जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी, तारीख में जब तक मुसलमान तरक्की और अरूज के जीने पे रहे तब तक आपस में उल्फतें भी थी, मोहब्बतें भी थी, तो ये अल्लाह का फजल होता है। किसी गिरोह के लोग आपस में मोहब्बत करें, किसी मुल्क के मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करें, और लफ्ज़ मुस्लिम बुनियाद बने वजह उल्फत की, ये नहीं कि ये मुहाजिर हैं, ये हमारे मुल्क में क्यों आ गए, ये सिंधी, ये पंजाबी, ये मुहाजिर, ये फलां, नहीं, तो सारी मोहब्बतों का सिरा अल्लाह के हाथ में। वल्लफ बैना कुलूबिहिम लव अनफक तमा फिल अर्दी जमिया मा लफ तबई ना कुलू बिहिम, ये अल्लाह से मिलती है। मोहब्बतें भी रिस्क होता है, माँ बाप कितनी ख्वाहिश कर ले, कितना बेटी को सोने चांदी से तोल के भेज दें, अगर मोहब्बत नहीं मिलनी वहाँ से नहीं मिलेगी। दामाद को रिश्ते राडो की घड़ी पहना दे, उसकी माँ को कड़े पहना दे, अगर उन्होंने मोहब्बत नहीं करनी आपकी बच्ची से तो नहीं करनी। ये मोहब्बतें अल्लाह के हाथ में हैं, अल्लाह ताला का नाम अलवदूद भी है, वो मोहब्बत करता भी है और कराता भी है। फिर 65 से 66, कुव्वत ईमान कलील मोमिनों को कसीर काफिरों पर गालिब कर देती है, यानी एक वेपन जिससे गैर मुस्लिम तो हमेशा महरूम है वो ईमान का वेपन है। बाकी तीर तलवारें और आप एटॉमिक एनर्जी और बुलेट एनर्जी जो मर्जी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल ईमान बंदे मोमिन के, वो कहते हैं ना हाथ है बंदे मोमिन का अल्लाह का हाथ, तो ईमान के साथ एक ऐसी कुव्वत आती है कि टूटी हुई तलवार अल्लाह के नबी ने उकाशा के हाथ में दी और वही चमकती हुई तलवार में बदली और आखिरी वक्त तक उनके साथ रही, और कितनी जंगें उन्होंने इस जंग से जीत ली थी। तो असल चीज़ जो ज़रूरत है अपने अंदर और अपनी नस्लों के अंदर छोड़ के जाने की, वो ईमान की कुव्वत है। इसीलिए कहा यकुम मिनकुम इश्रूना साबिरूना यग़लिबु मियतैन, यानी पहले दौर में तो एक मुसलमान के आगे दो मुसलमान काफिर आते थे तो भी, और 10 भी, और 10 तक की भी बात थी, और अब तो सिर्फ एक से दो का रेशो रख दिया गया। ज़्यादा ईमान के साथ ज़्यादा सख्त है हिसाब, और कम ईमान के साथ मदद भी कम है और हिसाब भी रिलैक्स्ड है। फिर 67-69 में काफिरों को कैदी बनाने पर अजहारे नाराज़गी है। बदर में पहली दफ़ा जंग के कैदी आए थे, मुसलमानों को नहीं पता था क्या करें, तो अल्लाह के नबी की आदत थी मशवरे की, आपने मशवरा किया। अबू बकर सिद्दीक़ की राय ज़रा नरम थी कि अल्लाह के नबी आप इनको मारिए नहीं बल्कि इनका जिज़िया ले लीजिए, उससे इस्लाम को फ़ायदा होगा। आपकी तबीयत का मेलान नरमी की तरफ था, आप भी यही चाहते थे। हजरत उमर फारूक की राय हमेशा दो टोक हुआ करती थी, उन्होंने कहा नहीं इनको कत्ल कीजिए क्योंकि इनके सरों में खुन्नस भरा हुआ, अब ये तो मजबूरी में कैदी बने हैं ना, छोड़ के देखिए ये फिर जाकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करेंगे, हो सकता है पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर आए। पहली राय पे अमल हो गया, अल्लाह की आयतें उतर गईं कि अल्लाह का इरादा वो था या हुआ तो अल्लाह ही के हुक्म से था, लेकिन पसंदीदा चीज़ उमर की राय की थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने चूंकि इज्तिहादी मामला था तो उसको पीछे किया, लेकिन इन आयतों में ज़रा सी संजिश कर दी कि इस्लाम का मिजाज दबके रहने वाला नहीं है। मदद अल्लाह की है, माल दौलत पैसे की वजह से दूसरों को मत देखो, अल्लाह तुम्हें मदद देगा। और आयत 70 से 71 में कैदियों से इजहार शफकत भी किया जा रहा है कि या यूह नबी यू कुल्ली मन फी ईदी को मिनल असरा, ए नबी आपके हाथ में जो कैदी आ गए हैं अगर अल्लाह तो इनके अंदर कोई खैर देखेगा तो इनको इससे ज़्यादा देगा, यानी फिर बाद में कई लोगों को इस्लाम भी मिल गया और ये मुसलमानों में जब साथ रहे तो इनको फिर बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी हुआ। फिर उसके बाद 72-73, दोस्ती का मेयार रिश्ते ईमान को बनाओ। इन अल्लज़ीना मनु व हाजरु व जाहदु बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह, यानी वो लोग जो जान से हिजरत कर चुके, जिहाद कर चुके, वल्लज़ीना व नसरु उलाइक बादहुम अवलिया उबाद, इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने घर खोले, दिल खोले, हाथ बढ़ाए और उनको जगह दी जो हिजरतें करके आए, यानी ये अनसार की बात है, वो महाजर बनकर आए तो ये अनसार थे, उलाइक बादहुम अवलिया उबाद, तो यही हैं असल में एक दूसरे के दोस्त। तो इस्लाम ने एक ऐसी खूबसूरत अखवात पैदा की कि जिसने रहती दुनिया तक अपने असरात मुरतब किए। और फिर सूरत के एंड तक आयत 74 से 75, बंदे मोमिन की ज़ाहरी सिफात, यानी वो तो इरादा था वो तो करना है, लेकिन बंदे मोमिन को भी फिर हाजरू वजाहदू आमनू के बाद होना पड़ेगा और इसी तरह रिश्ते नाते जोड़ने पड़ेंगे। तो आप देखिए कि बज़ाहरा हम इन आयतों को, इन सूरतों को ओवरलुक करते हैं। मैंने कभी लोगों को इसके वजीफे करते नहीं देखा, कभी तस्बीहों पे पढ़ते नहीं देखा, पन सूरे में भी ये सूरत कोई भी नहीं है, लेकिन इनके अंदर किरदार साजी के कैसे जेम्स हैं, कैसे मोती हैं, कि अगर हमारा मिजाज सिलेक्टेड सूरास पे बस गौर व फिक्र करने की बजाय हकीकत में इनको अपनी ज़िंदगी के लिए एक लाहे अमल बनाने वाला होता तो हम बहुत कुछ सीख चुके होते, आज तक हमारी उम्मत की जहालत भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती। अब चलते हैं सिलेक्टेड आयतों में से कुछ हिदायत जो अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए इसमें रखी हैं, और एक एक हिदायत एक एक मोती है जो आपने मैंने चुनना है इंशाल्लाह। आप देखिए कि किसी भी पारे का पूरा मिजाज एक बात सुनकर नहीं आता, पहले एक एक आयत देखी, या जो आयतें एक मौजू की थी दो दो तीन तीन इकट्ठी वो देखी, अब हम बिग पिक्चर पे रहेंगे, फिर आप बाद में खुद ही ढूंढ रहे हैं, डोंट्स ढूंढ रहे हैं, अल्लाह की रहमत से देखिएगा ये पारा तो कुछ दिन में आपको बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली लगेगा। और सारा कुरान अगर एक एक करके चले गए आपके जहन से एक दफ़ा गुजरा तो इंशाल्लाह आप फील करेंगे सिर्फ इतनी मुख्तसर सीरीज़ को सुनने के बाद भी कम अज़ कम दिल में भूख जागेगी और सीखने की, और जो तरावी में कुरान पढ़ते हैं या आम तौर पे सुबह तिलावत करते हैं वो भी समझ आएगा। तो आयत 45 से 46 क़िताल के लिए अहम हिदायत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मोमिनो, जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो, यानी मैदान जंग से कदम पलटाना कबीरा गुनाह है। वजह, ऐसे शख्स ने अपनी जान तो बचा ली और इस्लाम को खतरे में डाल दिया। चलती गाड़ी में से कोई छलांग लगा दे ड्राइवर और ये सोचे कि मैं तो बच जाऊं, और थोड़ी कोशिश की वजह से जब वो सब को बचा सकता था ना बचाए तो मुजरिम है, जेल में डाल दिया जाएगा अगर बच गया। फिर इसी तरह अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र जो है ना, ये रहमतों को लेकर आता है। फ़ज़कुरून यज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। आप मैदान जंग में जब जमते हैं, खड़े होते हैं, आप जो वह जियेंगे या मरेंगे इधर ही हैं। हमारा नसीब बस इसी के साथ जुड़ गया। फिर आपकी ज़ुबानें जिक्र से तर हैं, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुश्मन के दिल पे रोब आता है। अल्लाह आपका जिक्र ऊपर शुरू करते हैं, फरिश्तों जाओ ये मेरा जिक्र बुलंद कर रहे हैं, ला अल्लकुम तुफ्लिहून, फलाही फलाह। साथ कुछ और भी काम दे दिए, अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और रसूल की बात खुशी से माना करो, झगड़े ना करो। वला तनाज़ऊ फतफ़शलू व तसख़बरी हुकुम वस्बिरू, यानी कह लीजिए कि एक एक जेम है, ये कर लीजिए तो बच्ची ससुराल में भी खुश रहेगी, ये कर लीजिए तो आप अपने इदारों और अपने इंस्टीट्यूट में भी कामयाब हैं, और मैदान जंग में तो ऑफ कोर्स दुश्मनों के दिलों पर रोब तारी हो जाता था। मुसलमानों को देखकर कहते थे ये कौन लोग हैं। एक शख्स एक दफ़ा एक मुसलमानों के साथ लड़ने वाला, रात को जब फौजें अपनी अपनी कुचारों में चली जाती हैं तो इसके दिल में आया कि मैं ज़रा इनको देख के तो हूँ, ये रात को क्या करते हैं। आराम से घोड़े पे बैठकर अपने उस काफले के इर्द गिर्द घूम घाम के देखा कि अंदर खाते क्या हो रहा है। इतना रोब दिल पे तारी हुआ, कहने लगा कि लश्कर इस्लाम के पास से शहद की मक्खियों की बिन बनाहट की आवाज़ आ रही थी। करीब से जरा कान लगाकर सुना तो पता चला कि लश्कर इस्लाम का एक एक सिपाही तहज्जुद में अल्लाह को कुरान सुना रहा है। खौफ तारी हुआ वापस आया, कुब खुलाफ नाम था उसका, अपने फौज कमांडर के पास गया, कहने लगा मैं कभी नहीं कहता इस गिरोह के साथ हमारा सामना हो और फिर हम जीतें, मैं ये कहता हूँ कि इनसे कभी हमारा वास्ता ही ना पड़े, और मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि इनका रास्ता छोड़ दो, तुम इनको नहीं मुसख़र कर सकते और वापस चलो। और फिर जो जुमला था सहाबा के लिए वो है असल में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वो है असल में कॉम्प्लीमेंट, कहा हुम फुरसानुम बिन नहार व रुहबानुम फिल्लैल। दिन में शख्स सवार बन के घोड़ों पे आते हैं, यानी दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं, आओ लड़ो। बुज़दिल नहीं होता मुसलमान, कराहियतुल मौत नहीं होती उसके दिल में, लेकिन सुबह रातों को वो अल्लाह के खौफ से रोने वाला राहे बन जाता है। अल्लाह आज के मुसलमान को ऐसा कर दें। मौत के डर ने तो हमें कहीं का ना छोड़ा, हुकूमत कहे, लोग कहें, घरों में बंद हो जाओ तो हम बंद होने को तैयार हैं, एक ना नज़र आने वाले वायरस से डर के। अच्छी बात है, कभी इस खौफ को अल्लाह की बात पे भी तो रखिए, जब अल्लाह कहता है निकलो नहीं मरोगे तुम, आओ मेरे रस्तों में, तो फिर क्यों कराहियतुल मौत है। अल्लाह के दीन को सर्व करते हुए क्यों परेशान है, और तबलीग के लिए क्यों निकलते हुए खौफजदा हैं कि फिर कमाएंगे और खाएंगे कहाँ से। तो फिर अपनी हुकूमतों का और अपने साइंटिस्टों और डॉक्टरों की बात का तो ज़्यादा पास है, लेकिन अल्लाह का कितना है ये हर एक जानता है। फिर आयत 58 में देखिए, माहदे की पासदारी करना, यानी अगर माहदा किया तो पूरा करो, ये नहीं है कि माहदे कर करके तोड़ते रहो। वही मत खाफन मिन कौमिन ख़ियानतन, यानी अगर किसी कौम से ख़यानत का भी अंदेशा हो तो इनका अहद इन्हीं की तरफ फेंक दो, यानी बता के तोड़ तोड़ दो, बराबर का जवाब दो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को दोस्त नहीं रखता, यानी मुसलमान बेवकूफ़ नहीं होता, ना समझ नहीं होता। उसके खिलाफ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऊपर कुछ नीचे कुछ, अंदर से वो फौज हमलों की तैयारियां कर रही है और ये इसको अपने साथ जोड़ रहे हैं। मुसलमान इस तरह का लट्टू नहीं होता, उसको बड़ी अकल होती है, उसको समझ आती है ये मुझे फांस रहे हैं। फिर इसी तरह आयत 60 किताल के लिए तैयारी, यानी हम ये नहीं कह सकते कि आप मीन्स ना लें, आप मुसलमान हैं तो आप कोई तैयारी ना करें, कोई टेक्नोलॉजी ना बनाएं, आप कोई लेटेस्ट एनर्जी से फ़ायदा ना उठाए। नहीं, वाइद लहुम मस्तता, तुम जहाँ तक हो तुम्हारे लिए उनके सामने उनके लिए तैयारी करो, बाकी अल्लाह के लिए नहीं तुम्हें करने की ज़रूरत। अल्लाह तो अब एक कुन कहेगा तो दुश्मन ख़त्म होगा। तो क्या पता चला कि ताकत का और घोड़ों के बांधने का इख्तमाम करो। यहाँ आप देखिए कि मिन कुवा, कुवा क्या है, एनर्जी, कल तक वो एटॉमिक एनर्जी थी, आज न्यूक्लियर एनर्जी में बन गई, कल कुछ और बन जाएगी। तो मुसलमान ये सारी तैयारियां करेगा, क्योंकि तुरहेबू न भी ही अदू अल्लाह, ये अल्लाह के दुश्मनों को और तुम्हारे दुश्मनों को डराएंगे। और अगर मुसलमान के पास वेपन ना हो तो लोग तो कल के खाते उनको आज खा देंगे। आज भी जिन मुल्कों के पास वेपन्स है अल्हम्दुलिल्लाह, दुश्मन उनकी तरफ मैली निगाह से नहीं देख सकता। फिर इसी तरह तुम नहीं उनको जानते, अल्लाह जानता है। ला तालमून अल्लाह, तो दोस्त दुश्मन का फ़र्क अल्लाह को पता है। तो वमा तुनफिकु मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाह युवफ्फा इलैकुम वअंतुम ला तुज़लमून। यानी फिर क्यों नहीं है मुसलमानों के पास वेपन, मुसलमानों के पास तैयारी क्यों नहीं? क्योंकि माल ही नहीं, लोग लगाते ही नहीं इस रास्ते पर। फ़ी सबीलिल्लाह, ओ वो ज़कात का कोई बचा हुआ हिस्सा, वो कोई फटी पुरानी चीज़ें जो अल्लाह के रास्ते में दे। जब मुसलमान अपना बेहतरीन हिस्सा अपनी शादियों पे लगाएं, घरों पे लगाएं, गाड़ियों पे लगाएं, और उतरन और चेंज और टूटी फूटी चीज़ें जाके अल्लाह को दे आएँ, तो भी टूटे फूटे हथियार ही होंगे। आज मुसलमान उम्मत अपना दिल खोल दे, देखिए इस्लाम कहाँ चला जाता है। हर जगह जहाँ इस्लाम के नाम पे माल मांगा जाए, दिल खोल कर इंसान उसमें लगाने को तैयार हो। फिर इसके बाद आयत 74, सच्चे अहले ईमान कौन है? वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह। ऐसे लगता है कि जैसे एक मोहब्बत भरी तकरार है, ईमान लाओ, हिजरत करो, जिहाद करो, और फिर जो जिहाद करके ये हिजरत करके आए उनको जगा दो, बस यही उलाइक हुमुल मोमिनून हक्का। स्टैम्प्ड मोमिन यही हैं, जिनके ईमान की हक्कानियत आसमान से उतरी वो यही हैं, बाकी हम पता नहीं किधर आते हैं। अल्लाह को पता है हमारा नाम किधर लिखा हुआ है, कभी दिल करे तो झांक के देखें तो सही हम अपने अंदर। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए मग़फ़िरत, इनके गुनाह अल्लाह ने माफ़ करने हैं। हैं गुनाह बहुत हैं, इंसान जो है माफ़ कर देगा। अल्लाह को बताइए मेरे बंदे हैं, एक दफ़ा अल्लाह को अपना बंदा बनाकर दिखा दीजिए। आपको अल्लाह अल्लाह को एक दफ़ा दिखा दें कि अल्लाह मैं तेरी हूँ, बस उसके बाद फिर अल्लाह ताला आपकी साइड लेता है। और रिस्कुन करीम, जिस रिस्क के पीछे लोग मरते हैं और दुनिया में भागते हैं, वो नहीं मिलेगा उनको, मिले ना मिले, इनको दुनिया का इज्जत रिस्क मिलेगा, इज्जत का रिस्क मिलेगा, मोहब्बतों का रिस्क मिलेगा, दुआओं का रिस्क मिलेगा, तो उसके ऊपर कोशिश करनी है। तो खूबसूरत से पैगाम मिले सूरह अल अनफाल से।